समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ फरहत नास। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में रोजाना हम आपको देते हैं देश और दुनिया के समाचार, मौसम की जानकारी लेते हैं, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं और कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में आपको बताते हैं। आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना मैथ्यू। नमस्कार नीना।
हेलो फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 9th ऑफ अक्टूबर। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी बिल्कुल नीना, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो है वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में भाजपा ने 48 विधानसभा सीटें और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं, वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट से 16,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 71,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस के विनेश फोगाट ने जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला उचाना कला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए और 5वें स्थान पर रहे। वहीं हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सभी 90 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट मिली है। केंद्र शासित प्रदेश में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांधरबल दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के परिजादा मोहम्मद सैयद ने अनंतनाग सीट से जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट ने अनंतनाग पश्चिम सीट जीती है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा से जीत दर्ज की है। पीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव हार गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 18 और 25 सितंबर और इस महीने की पहली तारीख को 3 चरणों में मतदान हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गीता सत्य विकास और सुशासन की धरती ने जीत हासिल की है और सभी समुदायों ने भाजपा को वोट दिया है।
Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of development projects worth over 7,600 crore rupees in Maharashtra through video conferencing today. The projects include the upgradation of Dr. Baba Saheb Ambedkar International Airport at Nagpur and new integrated terminal building at Shirdi Airport. In a big boost to affordable and accessible health care for all, the Prime Minister will inaugurate government medical colleges in Mumbai, Nashik, Jalna, Amravati, Gadchiroli, Buldhana, Vashim, Bandhara, Hingoli and Ambernath in Thane district. Mr. Modi will also inaugurate the Indian Institute of Skills IIS Mumbai with an aim to create an industry-ready workforce. established under a public-private partnership model and in collaboration with the Tata Education and Development Trust, the institute plans to provide training in highly specialized areas like mechatronics, artificial intelligence, data analytics, industrial automation and robotics, among others. Prime Minister Modi will also inaugurate the Vidya Samiksha Kendra that is expected to provide students, teachers and administrators with access to crucial academic and administrative data through live chatbots such as Smart Upasthiti, Swadhyay, among others.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी राजधानी वियंतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आसियान का वर्तमान अध्यक्ष लाओस होगा। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है।
The Reserve Bank of India announced a scholarship scheme for faculty members from academic institutions. Under the scheme, full-time faculty members teaching economics or finance at any UGC or AICTE recognized universities and colleges in India are eligible to apply for short-term research. The areas included for the scholarship are monetary and financial economics, banking, real sector issues and other topics of interest to RBI. The scheme aims to enhance awareness of the RBI's activities among faculty and students while providing exposure to various operational areas within the RBI. A maximum of 5 scholarships will be awarded to candidates shortlisted based on their curriculum vitae, a research proposal of no more than 1,000 words, and an interview conducted by a selection panel. The deadline for submitting applications is 5th of next month. Interested candidates can find the application form and further details on the RBI's official website.
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत इस वर्ष ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलता है। 1950-60 के दौरान यह रोग भारत में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था।
The conflict in the West Asia has intensified dramatically as Hezbollah unleashed its most substantial rocket barrage to date on the Israeli city of Haifa. The aggressive move comes with militant groups' leadership pledging to maintain its offensive against Israel. In response, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that Israeli forces have eliminated potential successors to former Hezbollah leader Nasser Nasrallah, though he did not disclose their identities. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres has highlighted the critical role of the UN Palestine Refugee Agency, UNRWA, in the region. Speaking to journalists, Guterres emphasized that UNRWA is more than ever indispensable and irreplaceable.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एआर रहमान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनका 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। स्क्रीन प्ले राइटर राहुल वी चित्तेला को गुलमोहर के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। पोन्नियिन सेल्वन 2 के लिए मणिरत्नम को बेस्ट तमिल फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं मानसी पारिक को फिल्म कच एक्सप्रेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
In men's cricket, India will take on Bangladesh in the second T20 international of the 3-match series in New Delhi today. The match will begin at 7 p.m. IST. The Surya Kumar Yadav-led India is leading the series 1-0. In the first match of the series, the host registered a convincing victory over Shanto-led Bangladesh, winning by 7 wickets in Gwalior. Harshdeep Singh and Varun Chakravarti claimed 3 wickets each in the first game. Hardik Pandya scored 39 runs off just 16 balls.
वहीं नीना आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की बात की जाए तो मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को कल 60 रन से हरा दिया। दो मैचों में दो जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड से हारने और पाकिस्तान को हराने के बाद भारत को अपने रन रेट को बेहतर बनाने और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए आज श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का।
शोफरत, फर्स्ट वी गो टू चेन्नई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड माइनॉरिटी अफेयर्स श्री जॉर्ज कुरियन विटनेस द 8th कंसेक्यूटिव हार्वेस्ट ऑफ दिस न्यू एज श्रिम्प प्रोडक्शन सिस्टम एज चीफ गेस्ट अलॉन्ग विद द हेड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड फिशरीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक MPEDA, CAA, NFDB, DOF एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर फ्रॉम द बैलेंटाइन स्टेट्स एट CIBA's मुट्टुकाडु experimental station yesterday. The minister invited the shrimp farming industry to adopt and scale up this new shrimp production system, which has the potential to put the Indian shrimp farming in right trajectory. Cultivation of shrimp species under controlled conditions is the proven commercial aquaculture model, continued to contribute 70% of seafood export earnings in value terms worth 46,000 crore rupees with a production of around 10 lakh metric tons. Despite its significant contributions, the profitability of shrimp farming has been challenged due to production risk disease, increasing production costs and stagnant farm gate prices for the last 15 years, even during extreme climate change. Events like extreme diurnal temperature variations, erratic rainfall patterns, floods and cyclones. ICARCIBA has developed its next generation super intensive precision shrimp farming technology, integrating its cutting edge technologies and expertise. It is a HDPE circular tanks based production system with central nursery and state of the art energy dispensation modes with an integrated wastewater management system. Farmers can plan their crop cycle in tune with market requirements in terms of shrimp size and volume. This new age shrimp production system is expected to achieve a revolution in the shrimp farming sector. Karnataka Deputy Chief Minister and Irrigation Minister D.K. Shivkumar has informed that a meeting will be called by him soon on the upkeep of Tungabhadra Dam that is 70 years old, addressing Raita Dachera program in Sindhanur in Raichur district yesterday. Shivkumar said that legislators, irrespective of party lines, have requested him to look into the problems pertaining to Tungabhadra Dam and take remedial measures. He assured that the report of the technical committee will be taken seriously and the old crest gates in the Tungabhadra Dam will be replaced and the government will protect the interests of the farmers in the region. Referring to the crest gate collapse incident in the dam of a few months back, the minister said that the crest gate was restored in a record time, thereby saving precious water in the reservoir meant for out farmers. This measure, he added, helped save crops on 12 lakh acres. In Telangana, the Cabinet Subcommittee on SC Subcategorization has decided to recommend to the Cabinet to appoint a one-man judicial commission to study subclassification within the scheduled caste reserved categories. This was discussed during the meeting of the Cabinet Subcommittee chaired by Irrigation and Civil Supplies Minister Captain N. Uttam Kumar Reddy held in Hyderabad yesterday. The committee has already held 3 meetings on this matter, resolved to use the 2011 census data as the basis for subcategorization. It decided to recommend the constitution of a one-man judicial commission led by a retired judge of the Supreme Court or High Court to assess intra-backwardness among different castes within the SCs. The Telangana state government has announced implementation of vehicle fleet modernization policy in line with the recent amendments to the Motor Vehicle Act and similar to other states. The policy aimed at providing incentives for encouraging a voluntary ecosystem for phasing out end-of-life vehicles in the interest of road safety and clean environment. The government orders issued in this context stated that the implementation begins from January next year and the vehicles that are 15 years old or more and fail to pass witness tests will be condemned. These vehicles will no longer be allowed to register or operate on roads. And now Farhat ji, let's hear from you.
जी बिल्कुल नीना, सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से कर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम ने त्योहारों को देखते हुए राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत निगम के सभी 250 वार्डों में कूड़े और मलबे का निस्तारण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर डॉ शैली ओबराय ने और सदन के नेता मुकेश गोयल ने कल एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि शहर में कूड़ा और मलबा बड़ी समस्याएं बन चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजधानी में हर वर्ष सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या रहती है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका मलबे की होती है। महापौर ने बताया कि इस मुहिम के तहत दिल्ली के सभी 12 क्षेत्रों के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने क्षेत्रों और वार्ड का रोजाना निरीक्षण करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के विजय घाट क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 23 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए आकी गई है। इसके अलावा मादक पदार्थ की आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी जब्त की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC इस महीने साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मना रहा है। इस अवसर पर कल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने नेतृत्व क्षमता पर एक व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो जैसी शहरी परिवहन प्रणालियों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर DMRC के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने परिचालन प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने हाल ही में नवरात्रि के उपलक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर नव दुर्गा नामक एक विशेष टिकट जांच अभियान का आयोजन किया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार CSMT और आसपास के स्टेशनों पर तेजस्विनी नामक सभी महिला विशेष टिकट चेकिंग बैच की प्रतिनियुक्ति की गई। विशेष रूप से त्योहारों के दौरान यात्रियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 9 RPF कर्मचारियों के साथ 51 टिकट चेकिंग कर्मियों की टीम को भी तैनात किया गया था। अभियान के दौरान टीमों ने अनियमित या बिना टिकट यात्रा के कुल 765 मामले पकड़े और सफलतापूर्वक 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है और आज महाअष्टमी है। षष्ठी पूजा सुबह 6 बजे शुरू हुई। आमंत्रण और अधिभाष अनुष्ठान शाम 6:30 पर शुरू होंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा उत्सव में भाग ले रहे हैं। पंडाल परिक्रमा के लिए शहर में आने वाली भीड़ को पूरा करने के लिए कोलकाता में अधिकारियों द्वारा विशेष बस और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी चलाई जा रही हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मेट्रो सेवाएं भी चलाई जा रही हैं। महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की नीना कर लें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी आज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता की अगर बात करें तो बादल छाए रहेंगे और दिन में बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। तो नीना ये तो थी बात दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम की। कैसा रहेगा चेन्नई और बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम?
यस फरहत, लेट्स मूव ऑन टू चेन्नई बेंगलुरु एंड हैदराबाद वेदर। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद 1 or 2 स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 degrees. Hyderabad is expected to have rain or thunder showers would occur towards evening or night. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आज 9 अक्टूबर 2024 है और आज ही के दिन सन 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत का सफल प्रयोग किया गया। इस ऐतिहासिक घटना ने दूरसंचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की और इसके बाद 1947 में ये तकनीक और भी विकसित हुई जब चलती हुई कार प्लेन में बैठे लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की। इसके बाद 1959 में ऑटोरिक्शा और प्लेन में बैठे लोगों के बीच बातचीत संभव हो पाई जिसने संचार की सीमाओं को और विस्तारित किया।
In 1776, the first recorded observance of Columbus Day, commemorating Christopher Columbus' landing in America. In 1847, the first American edition of Jane Eyre, written by Charlotte Bronte, is published.
और वहीं 9 अक्टूबर 1962 में आज ही के दिन युगांडा ने एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। ये दिन युगांडा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
In 1876, the first two-way conversation over the phone was held using an outwire.
1997 में आज ही के दिन इटली के लेखक और अभिनेता डारियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उनकी अनूठी शैली और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए सराहा गया।
The Battle of Britain continued as German Luftwaffe launches an attack on London. In 1949, the Territorial Army of India inaugurated by the Governor General.
वहीं 9 अक्टूबर 2005 को यूरोपीय उपग्रह क्रायोसेट का प्रक्षेपण विफल हो गया। ये उपग्रह जलवायु परिवर्तन और बर्फ की मोटाई को मापने के लिए विकसित किया गया था।
In 1970, production of uranium 233 started at Bhabha Atomic Research Center in Mumbai. 1976, international dialing telephone service started between Mumbai and London. World Post Day is celebrated each year on 9th October, the anniversary of the establishment of the Universal Postal Union in 1874 in the Swiss capital Bern. It was declared World Post Day by the UPU Congress held in Tokyo, Japan in 1969.
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि और साहित्यकार गोपबंधु दास की। ये उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोबंधु दास को उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के लोग इन्हें दरिद्र सखा अर्थात दरिद्र के सखा के रूप में याद करते हैं। गोबंधु दास ने उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित करके पूर्ण उड़ीसा राज्य बनाने की जी जान से कोशिशें की। उत्कल के दैनिक पत्र समाज के ये संस्थापक भी रहे।
Brandon Roth is an American actor who celebrates his birthday today. He portrayed Superman in the 2006 film Superman Returns, which garnered him international fame. Today it's also the birthday of John Vinson Ono Lennon, popularly known as John Lennon, an English singer, songwriter and musician. He gained worldwide fame as the Beatles' founder, co-lead vocalist and rhythm guitarist. His work included music, writing, drawings and film. Here's a medley by John Lennon.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. I give her all my love, that's all I do.
और आज प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक अमजद अली खां का जन्मदिन है। 1963 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली अमेरिका यात्रा की। इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खां का सरोद वादन भी शुरू हुआ।
उस्ताद अमजद अली खां वॉज बॉर्न ऑन 9th अक्टूबर 1945 इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ही वॉज अवार्डेड इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण इन 2001, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण एंड पद्मश्री।
उस्ताद अमजद अली खान ने देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण संगीत केंद्रों में प्रदर्शन कर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध किया। इनमें कुछ प्रमुख हैं रॉयल अल्बर्ट हॉल, रॉयल फेस्टिवल हॉल और वर्तमान में उस्ताद अमजद अली खान के दो पुत्र अमान और अयान सहित देश विदेश के अनेक शिष्य सरोदवादन की पताका का फहरा रहे हैं। को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान और पद्म भूषण सम्मान।
Interviews to Financial Express, Ustad Amjad Ali Khan said that All India Radio was a guru for so many young musicians interested in classical music. He also said youngsters must listen to all kinds of music, and he is the sixth generation, right from Tansen, that are learning.
बिल्कुल नीना, और जिस तरीके से आज के युवाओं को जो हिप हॉप वाले सॉन्ग्स पसंद है तो उससे हटकर उनको क्लासिकल की तरफ रुझान अपना बढ़ाना चाहिए, तो इससे जो मन की शांति है वो और बढ़ेगी।
सईद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, आल्सो नोन एज हजरत निजामुद्दीन, वाज बोर्न ऑन 9th अक्टूबर 1238 इन बदाऊं, उत्तर प्रदेश। He was a Sunni Muslim scholar, Sufi saint of the Chishti order, and unarguably one of the most famous Sufis on the Indian subcontinent. For him, his love of God implied a love of humanity. It is claimed by the 14th century historiographer Ziauddin Barani that his influence on the Muslims of Delhi was such that a paradigm shift was effected in their outlook towards worldly matters. And here is a song dedicated to Nizamuddin Aulia by music director A.R. Rahman from the movie Rockstar.
और आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन की पुण्यतिथि है। उन्होंने रामानंद सागर के महाकाव्य रामायण सहित कई फिल्मों और टीवी शो के लिए संगीत तैयार किया जो आइकॉनिक बन गए। जब भी रामायण के संगीत की बात आती है तो रविंद्र जैन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि रविंद्र जैन धारावाहिक रामायण के संगीतकार भी थे।
मंगल भवन अमंगल दशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन।
रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के सात सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। वे मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ साथ बेहतरीन गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आशु रचना की उन्होंने करके सबको चौंकाया। मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा, कृष्ण चंडे डे के बाद रविंद्र जैन दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गया।
Simon Oliver Sinek celebrates his birthday. He is an English-born American author and inspirational speaker on business leadership. His books include Start With Why 2009 and The Infinite Game 2019. As a motivational speaker, Sinek has spoken at the UN Global Compact Leaders Summit in 2016 and at TEDx conferences several times beginning in 2009.
और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.